سورت فاتحہ، قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ اس سورت کا اصلی نام ہے، یعنی جیسے بھی کسی انسان یا کسی چیز کا ایک اصلی نام ہوتا ہے اور کچھ اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں، سورت الفاتحہ انہی سورتوں میں سے ہے کہ جس کے ایک سے زیادہ نام ہوئے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، فاتحہ، اردو میں یہ لفظ ہم بولتے ہیں فاتح کے معنوں میں۔ کسی شہر کو فتح کرنے والے کو فاتح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پہلے دور میں جب کوئی کسی شہر کو فتح کرتا تھا تو دروازے کو کھول دیا جاتا تھا۔ آپ نے لاہور شہر کے دروازے دیکھے ہوں گے، بھاٹی گیٹ اور کچھ اور گیٹ، دہلی میں بھی کچھ دروازے ہیں۔ پہلے دور میں دشمنوں سے بچاؤ کے لیے شہروں کے ارد گرد حصار ہوتا تھا، یعنی دیواریں کھینچتی تھی، اور جو اس کا دروازہ کھول کے اندر چلا جاتا تھا اس کو فاتح کہتے تھے۔ تو سورت الفاتحہ کو سورت فاتحہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہی سورت آتی ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سورت انسان کی زندگی کا ایک نیا دروازہ کھولتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ تو سورت فاتحہ کے ذریعے سے انسان کی زندگی کا ایک دوسرا دروازہ کھلتا ہے جو بالکل اس کو ایک دوسرے جہان میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے کچھ اور نام بھی ہیں، جس میں سے ایک نام ہے ام القرآن۔ یہ نام صحیح مسلم کی ایک روایت میں استعمال ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو ام القرآن یعنی سورت فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اسی وجہ سے سورت الفاتحہ کی تلاوت نماز کا حصہ ہے۔ آپ کی جس رکعت میں سورت فاتحہ مس ہو جائے وہ رکعت آپ کو پھر دہرانی پڑتی ہے۔ دوسرا نام ہے اس کا وافیہ، وافیہ اور کافیہ۔ کافیہ کا مطلب کیا ہے؟ کفایت کرنے والی، کیونکہ یہ سورت مقاصد قرآن کو اپنے اندر سمیٹنے والی ہے، کفایت کرتی ہے۔ صرف اس ایک سورت کے اندر وہ چیز ہے کہ جو پورے قرآن پاک میں بعد میں ڈیٹیل سے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا نام ہے اساس القرآن۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو، قرآن پاک کی بنیاد ہے اصل میں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ دین اسلام کی بنیاد ہے تو بھی یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ پھر اس سورت کا نام سورت الحمد ہے، تعریف والی سورت، کیونکہ پہلی ہی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم بیمار ہو جاؤ تو فاتحہ کو لازم پکڑ لو۔ اسی طرح اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی اساس اور بنیاد ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام ہے شافیہ اور الشفا۔ روایت میں آتا ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا السام، سورت فاتحہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے موت کے سوا، یعنی موت کا علاج نہیں ہے، باقی ساری چیزوں کا اس کا علاج اس میں ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورت فاتحہ جو ہے اس کے اور بھی نام ہیں، لیکن یہ اتنے نام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کفایت کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ترتیب کے اعتبار سے سورت فاتحہ پانچویں وحی ہے، یعنی پانچویں نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیتیں یا صورتیں جو نازل ہوئیں، مکمل کوئی بھی صورت نہیں تھی، یہ پہلی مکمل صورت ہے۔ سب سے پہلی وہی تھی صورت الگ کی، پہلی پانچ آیتیں اس کی نازل ہوئیں۔ اس کے بعد صورت نون اور صورت قلم کی سات آیتیں نازل ہوئیں، ایک ہی صورت کے نام ہے، اس کو صورت نون بھی کہتے ہیں اور قلم بھی۔ 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے صورت ملک کے بعد۔ پھر صورت مزمل کی 9 آیتیں نازل ہوئیں، پھر صورت مدثر کی 7 آیتیں، اور اس کے بعد پھر سورت الفاتحہ نازل ہوئی۔ یہ مکمل سورت نازل ہوئی۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین میں یہ اختلاف ہے کہ کیا یہ مکہ میں نازل ہوئی کہ مدینہ میں۔ مکہ میں نازل ہوئی آف کورس، کیونکہ یہ ابتدائی دور کی سورت ہے، لیکن اس کا ایک بار مدینہ میں بھی نازل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین میں سے اکثریت کی یہ رائے ہے کہ یہ سورت دو دفعہ نازل ہوئی، اور کسی چیز کا دو دفعہ نازل ہونا اس کے مضمون کی اہمیت کے اعتبار سے ہے. پوری سورت میں 7 آیتیں ہیں. کچھ لوگ بسم اللہ کو بھی سورت کا حصہ سمجھتے ہیں، کچھ بسم اللہ سے پہلی آیت لیتے ہیں تو پھر وہ آخری آیت کو ایک ہی ساتھ پڑھتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ ایسے ہی ہے جیسے ہر سورت سے پہلے اور الحمدللہ اس کے بعد ہے. بہت فقہی بحثیں ہیں لیکن ہمارا اس سے کوئی گہرا تعلق نہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس میں آتی ہے تو ہم پڑھیں گے. لیکن یہ ہے کہ بہت ہی پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ترتیب رکھی ہے. پہلی 3 آیتیں جو ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے. اور آخری 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان 3 آیتوں میں دعا ہے. جو ایک ایمان والا ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اور جو بیچ کی بالکل مڈل کی آیت ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اصل میں ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اس کو واضح کرتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اس میں جو بات مختصراً بتائی گئی ہے وہی بات پھر پورے قرآن پاک میں کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اور اس سورت کے آخر میں آمین کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ بعد میں پڑھا جاتا ہے، اور صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے کہ وہ اس سورت کے بعد آمین پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسا کرتے دیکھا. تو لہٰذا جب آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں اس کو جیسے بھی پڑھ لیں، اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اونچی آواز میں پڑھا جائے تاکہ دوسرے بھی اس پہ آمین کہیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہود کو مسلمانوں پر جس بات میں رشک ہے، یعنی جس سے وہ حسد محسوس کرتے ہیں، ان میں سے ایک بات سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنے میں بھی ہے. اسی طرح ایک اور روایت کا خلاصہ ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. تو لہٰذا اس سورت کے اندر بہت ساری پیاری چیزیں ہیں. ہم براہ راست سورت پہ چلتے ہیں تاکہ اس کے مضمون سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ کی تفسیر تھوڑی سی ہم نے یہاں کی تھی، باقی انشاءاللہ اگلی صورتوں میں جہاں آتی جائے گی ہم وہاں کریں گے، کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب بھی بسم اللہ کی تفسیر شروع ہوتی ہے سارا وقت اسی میں چلا جاتا ہے. یہ اتنا پیارا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے پیارے طریقے سے اپنا تعارف کرایا ہے. لیکن جو بات بسم اللہ میں ہے وہی چیز انشاءاللہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی ملے گی. تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کون اللہ؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے. بس اتنا ہی ہے؟ نہیں. الرحمن الرحیم، بہت رحم فرمانے والا اور مہربان ہے. بات شروع ہوتی ہے لفظ الحمد سے، تمام تعریفیں اللہ کے ہیں. ان کا لفظ عربی زبان میں 3 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شکر، تعریف اور ثنا. تو ہم اس کا ترجمہ 3 مختلف طرح سے کر سکتے ہیں. تمام شکر اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اور تمام ثنا اللہ کی ہے. اب ان تینوں اگر ہم تھوڑا تھوڑا الگ الگ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی اصل کو ہم سمجھ سکیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ تمام شکر اللہ کا ہے. کس بات کا شکر؟ اس بات کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اللہ کی ذات نے ہمیں وہ کچھ دیا جو ہم ڈیزرو کرتے تھے، اور وہ کچھ بھی دیا جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اللہ کی ذات ہم سے اتنی محبت کرتی ہے جتنی محبت دنیا کی کوئی ذات ہم سے نہیں کر سکی. اصل میں جو بندے سے مطلوب چیز ہے نا وہ شکر ہے، اور شکر ایسے ہی ہے جیسے چینی میں شکر، چائے میں شکر. پھر آپ لکھ کے دیکھیں तो शुक्र और शक्कर में जबर और पेश का फर्क है। आपने कभी खिलाड़ियों को खेलते देखा होगा, लोगों को मुश्किल काम करते देखा, थोड़ी देर बाद वो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। कुछ लोगों ने कोल्ड्रिंक्स रखी होती हैं, कुछ ने कुछ, क्यों कि जब मेहनत करते हैं तो के साथ जो उनकी बॉडी में एनर्जी कम होती है ना, उसको पूरा करने के लिए वो थोड़ी थोड़ी सुई लेते रहते हैं। यही कैफियत शुक्र की एक इंसान जिंदगी में, कि जब एक बंदा अल्लाह ताला की इस दुनिया में शुक्रगुजारी के रवैयों के साथ रहता है ना, तो उसके अंदर एक नई जिंदगी पैदा होती है। उसको महसूस होता है कि मैं अल्लाह ताला की नेमतों में हूँ। एक खास शख्सियत उभरती है शुक्रगुजार बंदे की। हम सबको अपना जगह लेने के लिए मालूम हो चाहिए कि शुक्रगुजार इंसान कैसा होता है, क्योंकि आप किसी नाशुक्र से नाशुक्र शख्स भी पूछे ना, बताइए जी आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, तो कहेंगे शुक्र है। क्या हाल? शुक्र है। इतना बड़ा ना शुक्र बोलते हैं, कई शिकवे होते हैं और उसके बाद ना शुक्र का लफ्ज बोलते हैं, लेकिन हकीकत है कि शुक्रगुजार इंसान की कुछ अलामतें हैं, उनको अपने अंदर ढूंढेंगे। पहली अलामत होती है कि वो खुश मिजाज होगा, लाइट माइंडेड होता है, प्रेजेंट पर्सनैलिटी। उसकी कंपनी में लोग एंजॉय करते हैं, जहां वो बैठता है ऐसे लगता है कि खुशी का एहसास होता है। फिर ऐसे शख्स की एक और पहचान क्या होती है कि वो लोगों के एहसान जो है वो मानने वाला होता है। कोई उसके साथ थोड़ा भी अच्छा काम कर दे ना, तो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। इसी तरह एक और अलामत होती है कि कोई उसके साथ भलाई करे तो वो उसके साथ उससे बढ़कर भलाई करना चाहता है, और अगर कभी कोई उसके साथ बुराई कर देना तो वो उससे भी अच्छा सलूक करता है। इसी तरह शुक्रगुजार इंसान की एक और निशानी क्या है कि उसके मिजाज में और उसके रवैये में और उसके बैठने उठने बातचीत करने के अंदाज में आजिज़ी होती है, आजिज़ मिजाज होता है। बहुत बड़े बड़े जुमले नहीं बोलता, टॉन्ट नहीं करता, ताने देने वाला अंदाज नहीं होता, मॉडेस्टी होती, वल्गर बातें उसकी ज़ुबान पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी ज़ुबान तो अल्लाह की नेमतों के एहसास के अंदर जकड़ी होती है, इनके सारी होती है। ऐसे शख्स की कंपनी परेशान जहन वाले लोगों के लिए एक मरहम का काम देती है, जैसे बॉन्डिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं ना। कोई अपने गमों का मारा हुआ, सताया हुआ, दुखा हुआ शख्स जब उसके पास आके बैठता है ना, उसका दिल करता है मैं अपना दिल खोल के रख दूं। उसको पता होता है कि इसने मुझे कोई अच्छा रास्ता बताना है, इसने कोई मुझे अच्छी बात बतानी है। इसी तरह शुक्रगुजार इंसान की एक और अलामत होती है कि अगर इस पर कोई मुश्किल भी पड़ जाए तो बड़े वक्कार और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर जाता है, ये सोच के कि इतनी ज़िंदगी से नेमतें तो थीं, क्या हुआ अगर आज छोटी सी मुश्किल आ गई। बड़ा मिच्योर माइंडेड होता है। फिर इसी तरह एक और अलामत होती है कि किसी नेमत को अपना हक समझ कर नहीं लेता, बल्कि हर वक्त इस जज्बे के साथ चूर होता है कि अल्लाह ने मुझे मेरे हक से ज़्यादा दिया, आई डोंट डिज़र्व इट, मैं तो इसको डिज़र्व नहीं करती थी, ये मेरा हक तो नहीं था। हर नेमत उसके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज होती है कि अल्लाह इतना अच्छा शौहर मिल गया, मैं तो डिज़र्व नहीं करती थी, अल्लाह इतने अच्छे बच्चे मुझे मिल गए, इतने अच्छे ससुराल वाले मिल गए, इतने प्यारे माँ बाप के घर में मैं पैदा हुई। हर लम्हे वो नेमतों को इस तरह देखता है कि जैसे अल्लाह के इनाम है। और इसी तरह की कुछ और आदात जिसमें है, अगर तो आपको अपने अंदर दिखें तो फिर मुबारकबाद है कि आप वाकई शुक्रगुजार हैं। इसके बरक्स एक नाशुक्रा इंसान इससे ऑपोजिट होता है, हर वक्त परेशान, मायूस। बल्कि शुक्रगुजार में दो बातें और नोट करें कि उसकी ज़िंदगी में डिप्रेशन नहीं होता, मायूसी नहीं होती, वो कभी ख़ुदकुशी करने का सोचता भी नहीं है, कोई उससे पूछे बताओ जिंदगी क्या है, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नेमते ही नेमते, ये सब कुछ मेरे पास है, मैं तो बहुत खुश हूं। और ना शुक्रा इंसान, आहें भरने वाला, हाय चेहरे पे झुरियां पड़ी हुई हैं, गम के गहरे साए हैं, मरने मारने की बातें करता है, जला कुटा बैठा रहता है, माथे पे सेवरी है, कभी कभी सर पे दुपट्टा भी बांध लेता है, कभी हंसता भी है तो ऐसे लगता है जैसे तंज के साथ हंस रहा है। कोई उसके साथ कोई एहसान करे तो कहता है हूं और करना नहीं था क्या, लेके आए हैं तो क्या अब हमें खिलाएंगे नहीं, इनका फर्ज बनता है। हाँ, जली कुटी सुनाने वाला, कोई उसके पास बैठ जाए तो उसको ऐसे लगता है कि असल जिंदगी जो है वो गमों और दुखों का नाम है, रोने धोने का नाम है, हर नेमत को फॉर ग्रांटेड लेता है। ये मेरा हक था, मिलना था मुझे, इसके अंदाज में आजजी नहीं होती और मॉडेस्टी नहीं होती, खुली बातें करता है, वल्गर बातें करता है, अल्लाह की जात के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी इसकी बातें ऐसी होती हैं कि जो खुली बातें आप कह सकते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि ऐसा शख्स लोगों की नज़रों में इंतहाई नापसंदीदा शख्स होता है, लोग उसकी कंपनी से घबराते हैं, डरते हैं, उसके पास नहीं जाना चाहते हैं, हर महरूमी की याद को अपने दिल में ताज़ा रखता है, हर वक्त गिन गिन के रखता है अपने सदमों को, माजी में गुजरे हुए किसी एक तल्ख तजुर्बे को इतनी दफ़ा दोहराता है कि उसको अजबर हो चुका होता है। उसको ये नहीं याद होता कि क्या मिला है, लेकिन ये उसको ज़रूर याद होता है कि क्या नहीं मिला। उसका दिल महरूमियों का कब्रिस्तान होता है, जिसके अंदर से ऐसा धुआं उठता है कि उसके चेहरे के ऊपर भी आंखों में हल्के पड़ जाते हैं, मायूस कुन बातें करता है, हर बात को नेगेटिव लेता है। मसलन कोई कहता है कि आजकल वेदर कितना खूबसूरत है, मतलब समर हो और एक हल्की सी हवा चले, शुक्रगुजार और ना शुक्र इंसान के रवैयों में फ़र्क कैसे दिखता है। शुक्रगुजार क्या कहता है कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम कितना अच्छा हो गया, और ना शुक्रा क्या कहेगा, खाक अच्छा है, देखो फ्लू फैल गया, हर तरफ सुरसुर हो रही है। शुक्रगुजार इंसान कहेगा देखो आज कितनी अच्छी हवा चल रही है, तो ना शुक्रा क्या कहेगा, देखो सारे घर में मट्टी भर गई। एक कहेगा देखो आजकल कितने अच्छे आम आ गए हैं, वो कहेगा छोड़ो चारों तरफ मक्खियां बैठी हैं, भिन भिन हो रही हैं, छिलके छिलके पड़े। अब परेशान होता है इंसान, अच्छा ये भी बात नहीं, हाँ चलो खरबूजों की बात करते हैं। आप कहते हैं देखो आजकल गर्मी है ना तो खरबूजे कितने अच्छे आए हैं, तो वो दूसरा कहता है छोड़ो स्क्रीन के इंजेक्शन लगाते हैं। यानी हर बात पे नेगेटिव एटीट्यूड, ना शुक्री क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड का नाम है। हर चीज को उल्टा ही लेना है। आपके सामने ये ग्लास है, इसको देखकर पहला ख्याल क्या आता है जहन में, शुक्रगुजार इंसान भरे हुए को देखेगा, आधा तो भरा हुआ है, और ना शुक्रा कहेगा ये आधा खाली है। जो इंसान शुक्रगुजार होता है ना, जो नेमतें मिली हैं उनको देखता है, कितनी मिली हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना कुछ है, और जो दूसरा ना वो ऊपर खला को देखता है, देखो ये भी महरूमी, ये भी खाली, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, और नतीजा क्या होता है कि ऐसा शख्स जो होता है वो जो नेमतें मिल गई है ना उसको भी इंजॉय नहीं कर पाता। शुक्रगुजार इंसान के पास कोई जाए तो उसको देखे वो खिल जाता है, अरे आप आए माशाल्लाह कितना अच्छा लगा, और ना शुक्रे के पास जाए, आ गए आप, आ गई याद हमारी, आज कोई और नहीं मिला होगा ना तो हमारे पास आ गए। आप कहते हैं ऐसे बंदे को तो फोन करें, अल्लाह करे बस मैसेज ही हो, मैसेज पे जवाब दे के बंद कर दें। शुक्रगुजार के लिए जिंदगी दुनिया में जन्नत है, और ना शुक्रे की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। ऐसा शख्स जो है वो फिर हर लम्हे यही सोचता है कि बस मेरी जिंदगी खत्म हो और मैं यहां से जाऊं। तो नतीजा क्या निकला कि शुक्र क्या है, खुलासा क्या बना, अपने आप को ये याद दिलाना कि अल्लाह ने मुझे बड़ी नेमतें दी हैं। अपने एसेट्स को गिनने का नाम शुक्र है। अपने बच्चों को देख कर आंखें ठंडी करने का नाम शुक्र है। अपने शौहर को देख कर ये सोचने का नाम शुक्र है कि अल्लाह तेरा शुक्र है शौहर है तो। देखिए नेमते हैं ना। चलें, माँ बाप को तो हम गिनते ही नहीं हैं किसी बात में। वैसे तो बच्चों को उनसे भी बड़े शिकवे होते हैं। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार में ये रिश्ता रखा नहीं है, वरना जितनी तल्लाकें मियाँ बीवी में होती हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा तल्लाकें माँ बच्चों में हो चुकी होती। सच्ची बात है। अपने आप को चेक करें, दूसरों को छोड़ दें इस वक्त, सारी बातों को पीछे रहें। मैंने अभी वो सारी वजाहतें की नहीं है जो लफ्ज़ शुक्र की थी। मैं तो इसके ऊपर आपको पहले ले आई कि पहले हम शुक्र को तो समझें, लेकिन अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। हम कहाँ पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, किस दौर में पैदा हुए, हमारा इख्तियार नहीं है ना। ना हम अपनी माँ को बदल सकते हैं, वो गोरी है या काली है, बस नहीं बदल सकते। किसी की बात हो रही थी कुछ अरसा पहले की बात, तो वालिद और वालदा दोनों वाजबी शक्ल के हैं, अल्लाह ने बनाई है शक्लें, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी फिर आगे से वैसे ही हुए। बाप की जवानी की बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि उनकी पहले कहीं इंगेजमेंट हुई थी और वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। ऐसी बातें हो रही थी तो किसी ने कहा कि अच्छा, अगर आपकी वहाँ शादी हो जाती तो क्या होता। तो बच्चों में से कोई बोला कि फिर हम खूबसूरत होते। अब ये एक बात है ना, छोटी सी बात जो मैंने बहुत कुछ अरसा सुनी पहले और मेरे जहन में ये रहती है। लेकिन आप देखिए कि हमने जिस माँ के बतन से पैदा होना था उसी से हुए। माँ गोरी है या काली है, पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, हम नहीं बदल सकते। मान जाइए, सीने से लगाइए उस माँ को, क्योंकि उसको आपसे बड़ी मोहब्बत है। अगर हमें मोहब्बतों का एहसास लेना है ना, जो अगले लफ्ज़ में होंगी इंशाल्लाह, तो आप हम अपनी माँ को छोड़ नहीं सकते। हम गांव में पैदा हुए कि शहर में हुए, क्या इसमें कोई फ़ख्र की बात है? आप कहते हैं हाय मैं गांव में क्यों आई, मैं शहर में पैदा होती, मैं टोक्यो में पैदा होती, मैं किसी बर्लिन में पैदा होती, तो क्या होता? आपके नसीब में था कि आपने कच्चे घर में पैदा होना है, मान जाइए। कुछ कहते हैं आज का तो दौर बड़ा ही बुरा है, ख़राब दौर हो गया, पहले के दौर बड़े अच्छे थे। और अगर ये उस दौर में पैदा हो जाते ना, तो इन्होंने रोना था कि चक्की पीस पीस के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। आपने यही 19,000 की सदी में पैदा होना था, आप हो चुके हैं। चलिए अब उसके बाद बारी आती है भाई बहनों की, वो तो एक आँख नहीं भाते। पहले दुआओं से मांगते हैं बहनें। मेरी एक कज़न है तो वो अकेली थी, भाई थे ज़्यादा, तो वो कहती थी अम्मी मुझे बहन चाहिए, अम्मी मुझे बहन चाहिए। अब अम्मी कहाँ से लाए, ये तो अल्लाह के फैसले हैं और अल्लाह ने सुन ली। तीन चार भाइयों के बाद बहन आ गई, दोनों में बड़ा फ़र्क था, शायद 10-12 साल का फ़र्क। अब हुआ क्या, वो छोटी आई तो उसको अब एक आँख नहीं देख रही। माँ कहती पहले तो तुम बहुत करती थी, अब ये नहीं, अब ये मेरी कमरे की चीज़ें ख़राब कर देती है, मैं अपनी दोस्तों के पास बैठती हूँ तो ये आके पास बैठ जाती है, अब इसको भेजें। ये क्या बात, भाइयों को बहन अच्छी लग रही है और बहन को भाई अच्छे लग रहे हैं। मान जाइए आप बड़े हुए, आगे उसके बाद क्या हुआ, स्कूल कॉलेज टीचर्स, वो तो हर वैसे नहीं अच्छे लगते, ब्रेक भी नहीं देते। तो हम बात कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की। अल्हम जो है वो पूरे दीन का खुलासा है, और ये वो चीज़ है कि जो एक बंदे को अल्लाह का आजिज बंदा बनना सिखाती है। हकीकत यह है कि हम में से हर एक अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार है, नेमतों की इंतहा में रहने वाला है। लेकिन जब तक हमारे दिल में नेमतों का इतराफ़ नहीं आता, तब तक हम शुक्रगुजार नहीं बनते। अपने हाल के साथ राज़ी हो जाने का नाम जो है वो अल्हम्द है, नेमतों का इतराफ़ है, इस एहसास का बेदार होना कि जो अल्लाह ने दिया वो उसकी ज़ात है कि उसने मुझे दिया, और अगर वो ना देता तो दुनिया में कोई और ऐसा है ही नहीं जो मुझे दे सके। और इसी के साथ आप देखिए कि अल्हम्द के लफ्ज़ में जब हमने शुक्र की बात की थी, और शुक्र तो नेमतों के साथ बढ़ता ही जाएगा, तो दूसरा तर्जमा हमने किया था तारीफ़। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हकीकत ये है कि तारीफ़ दुनिया में एक इंसान दूसरे की भी करता है, लेकिन वो तारीफें ऐसी नहीं होती कि कोई इंसान हकीकत में उसको डिजर्व करे। एक लफ्ज़ होता है हम्द और एक होता है मदह। हम्द क्या होती है? किसी की तारीफ करना जिससे आपको कोई फ़ायदा पहुंचता है, जिससे आपने कुछ लिया, आप उसको उसके जवाब में थैंक यू बोलते हैं। इसके बरक्स मदह क्या होती है? कि आपको उससे कोई फ़ायदा हो ना हो, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह ही के लिए हम्द है और उसी के लिए सना है। जब भी किसी की कोई तारीफ करें तो फौरन सोचें कि ये अल्लाह ही ने तो इसको नेमत दी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि दिल से हसद, रकाबत, एहसासे कमतरी जैसे जज्बात निकल जाएंगे। अब क्या सोचेंगे कि जिसकी मैं तारीफ करने लगी हूँ या जिससे मैं हसद महसूस कर रही हूँ, उसको किसने दी? आप देखेंगे कि आपकी निगाहें अल्लाह ताला पे लग जाएंगी। जो दूसरे को दे सकता है, क्या वो मुझे नहीं दे सकता? इस तरह बजाय इसके कि किसी नेमत को देखकर आप जलें कुड़ें, आप अल्लाह ताला से मांगने वाले बन जाएंगे, अल्लाह ताला की देन समझेंगे। फिर इसी तरह एक और मुस्बत रवैया हमारे अंदर पैदा होगा, और वो क्या है कि जो दे सकता है वो ले भी तो सकता है। वो लोग जो दुनिया में बहुत नामवर गुजरे आज किधर हैं? जो हुस्न की बुनियाद पे एक साल मिस वर्ल्ड कहलाती हैं, अगले साल वो कहाँ रह जाती हैं? जिनको औलाद मिली, क्या वो औलाद हमेशा उनके साथ रही? जिनके पास माल था, बिलियनेरियन थे, आज हो सकता है वो अपनी उन्हीं फैक्ट्रियों में एक आम वर्कर की हैसियत से खड़े हों। तो जूं ही आप अल्लाह की तारीफ के रंग में अल्हम्द कहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि असल ताकत अल्लाह की है। फिर किसी इंसान से आप इम्प्रेस नहीं होंगे। किस चीज़ का इम्प्रेस होना? इसने खुद किया क्या है? इसके अपने हाथ में क्या है? और ऐसे लम्हे में फिर एक इंसान अपने रब से मांगेगा। जिसने रब से मांगा, रब उसको कभी मायूस नहीं करेगा। और जिसने इंसानों की तरफ नजरें लगा दी, उसका हाल क्या होता है कि वो फिर हर लम्हे मायूस और परेशान रहता है। फिर इसी तरह अलहम्द को तारीफ के रंग में लेने से एक और फायदा भी होता है, और वो क्या कि तकब्बुर से दिल खाली हो जाता है, प्राइड से बचने लगते हैं, आजजी आने लगती है। आपको जितनी नेमत ज्यादा मिलती जाती है, आप उतनी ज्यादा अल्लाह की हम तारीफ के रंग में करते हैं कि अल्लाह जो दिया वो तूने दिया, और जब तू दे सकता है तो तू किसी लम्हे ले भी सकता है, तो मुझे बड़ा बनने का कहाँ इख्तियार है। इस तरह से एक इंसान अपनी ज़ात के खौल से निकलकर अल्लाह ताला की तरफ आने लगता है। फिर इसके बाद तीसरा मानी जो सना का था। सना का लफ्जी माना होता है दोहराना, रिपीट करना, किसी की तारीफ उसी के सामने कर देना, किसी की किसी सिफत से हमें फ़ायदा पहुंचे या ना पहुंचे उसकी तारीफ करना, इसे सना कहते हैं। अल्लाह ताला की सना हर चीज़ कर रही है। तस्निया का लफ्ज़ आपने सुना होगा, ड्यूल को कहते हैं, दो को। उर्दू में तो वाहिद और जमा होते हैं ना, अरबी में तीन होते हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद एक, तस्निया दो, तो वह तस्निया और सना एक ही लफ्ज़ है। सा नून हमजा इसमें दोहराने का मानी है, यानी अल्लाह की तारीफ उसी की तरफ पलटा दी जाए, उसके सामने गुनगाए जाए, उसकी तारीफ की जाए। और अल्लाह को ये सना बड़ी प्यारी लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का इजहार किया करते थे कि अल्लाह मैं तेरी उतनी तारीफ बयान कर ही नहीं सकता जितनी मुझे करनी चाहिए। जो तेरी तारीफों का हक है, जो तारीफ तुझे अपनी जात के लिए पसंद है, मेरे से वो तारीफ करवा। एक मौके पे एक सहाबी थे, तो उन्होंने नमाज में अल्लाह ताला के कुछ तारीफी कलमात पढ़ा दिए। रिवायत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हों से कहते हैं कि अल्लाह के एक बंदे ने कहा, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। ऐ मेरे रब, तेरे ही लिए हम्द है, जैसे कि तेरी बुजुर्ग जात और अजीम इकतदार के शायाने शान है। इस बात को सुन के फरिश्तों को दुश्वारी हुई, यानी मुश्किल हुई। वो ये ना समझ सके कि इसे किस तरह लिखें। वो अल्लाह के पास पहुंचे और अर्ज किया, ऐ रब, एक बंदे ने एक ऐसी बात कही है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। हालांकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं, फिर भी उसने पूछा, मेरे बंदे ने क्या कहा? कभी कभी होता है ना कि आपको पता होता है किसी ने क्या कहा, लेकिन आप सुनना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि मेरे बंदे ने क्या कहा? तो फरिश्ते फिर उन्हीं तारीफी कलमात को दोहराते हैं कि अल्लाह आपके बंदे ने कहा, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहक व अजीम सुल्तानिक। ए अल्लाह, तेरे लिए ऐसी ही हमद है जैसी तेरी बुजुर्ग जात और अजीम इकतदार यानी तेरे चेहरे की शान शान है। अल्लाह ताला ने ये बात सुनकर फरमाया, मेरे बंदे ने जैसे कहा वैसे ही लिख दो, यहाँ तक कि मेरे पास आएगा तो मैं इसको इसकी जजा दूंगा। यानी फरिश्ते इसका अजर ही नहीं लिख सके, घबरा गए कि अल्लाह क्या अजर दे, इतनी प्यारी बात, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहक। ये ऐसी जैसे आप किसी को कहें कि बस आपकी उतनी तारीफ है जितनी आपके लायक है, मैं तो कर ही नहीं सकता। हम अपनी जुबान में कहते हैं, आपकी तारीफ किस मुंह से करूं, मैं कैसे करूं? एक ईमान वाला अल्लाह की तारीफ के जज्बात में इतना ज्यादा मगन होता है कि फिर वो इंसानों की तारीफें नहीं करता, और खास तौर पे ये सोच के कि दूसरे उसको कुछ दें, उसको उनसे कुछ मिलेगा। तो ऐसा बंदा जब दिल के जज्बात को साथ लेके अल्लाह की तारीफ करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाते हैं। इसीलिए रिवायतों में आता है कि नमाज को अल्लाह ताला ने बंदे और अपने बीच में बांट लिया है, और वहां नमाज से मुराद सूरत फातिहा है। बंदा कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा रब तमाम तारीफों के लायक है। उसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। फिर बंदा कहता है, अर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो रहम वाला है मेहरबान है। तो उस पे अल्लाह ताला बंदे की तारीफ फरमाते हैं कि उनसा इलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर बंदा कहता है, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है तू। तो अल्लाह ताला कहता है, मजदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, बड़ाई बयान की, मेरी शान बयान की। और उसके बाद जब फिर बंदा कहता है, या कनाबुदु व या कनस्तईन और उसके आगे तक, तो अल्लाह ताला कहता है कि अब मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं उसको देता रहूँगा। अल्लाह ताला के साथ बंदे का ताल्लुक कायम होता है। तो गोया के सूरत अल फातिहा या इब्तदाई कलमात हमें दुआ मांगना भी सिखाते हैं। अल्लाह के साथ टूटे हुए तारों को जोड़ने का नाम है कि तारीफ की जाए।